ভট্টর গুণা শ্রীজীবী গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এছয়ে গোসাই করি চরণবন্দন যাওয়িতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরন জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীয়দ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রীগৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে বলো শ্রী গুরুজি মহারাজ কি জয় গুরু পরম্পরা কি জয় অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয় সপার্ষদ গৌরহরি কি জয় গৌর নিত্যানন্দ প্রভু কি জয় জয় জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদর্শন জীব কি জয় ভক্তবিঘ্ন বিনাশন কারণী সিংহদেব কি জয় ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয় সর্ব অভীষ্ট প্রেতা গিরিরাজ গোবর্ধন জীব কি জয় গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন জীব কি জয় ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয় ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ কি জয় ব্রজেশ্বরী মধেশ্বরী প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধারণী কি জয় ব্রজদেবীগণ কি জয় চাতুর্মাস্য ব্রত কি জয় বর্তমানকারী ভক্তবৃন্দ কি জয় সমবেত গৌরভক্তবৃন্দ কি জয় গৌর প্রেমানন্দে আবি হাম লোক চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করনে কে লিয়ে হাম লোক চেষ্টা করতে হ্যাঁ আর গুরুবর্গ কো স্মরণ করতে হ্যাঁ কে জব কাল গুরু পূর্ণিমা গিয়া ব্যাসদেব কা পূজন কিয়া আর ব্যাস অনুগত সব গুরুবর্গ কো স্মরণ কিয়া প্রার্থনা কিয়া কিসলিয়ে চাতুর্মাস্য ব্রতকে সময় এক হতা হয় মন্ত্র উপাসনা এক হতা হয় সারসিকী উপাসনা যদি কই মন্ত্র পুরস্মরণ করে জপ করে নিয়মপূর্বক প্রতিদিন হ্যাঁ ইষ্টমন্ত্র কা জপ করে পহলে জানতে নেই উনকা স্বরূপ ক্যা হ্যাঁ ধ্যান করনা ভি নেই আতা কিন্তু মন্ত্র কা সংখ্যাপূর্বক বিধিপূর্বক না ধো করকে আসন মে ব্যাঠ করকে আচমনাদি করকে আপনা গুরুবর্গ কো স্মরণ করকে আপনা মন্ত্র কা জপ করনা শুরু কিয়া উনকো খুশ আতা নেই সনাতন গোস্বামী কহতে হ্যাঁ জব গোবর্ধন মে রোজ পরিক্রমা করতে থে তো সময় একদিন ধূপ মে জব মূর্ছিত হয়ে গে গরমি তো দেখা গোয়াল বাল যোগ গাই চড়াতে ওর আগে আগরকে হ্যাঁ উনকো পঙ্খা করনে লাগ গে পানিকে ছিটা দেনে লাগ গে হ্যাঁ বড়ে প্রীতি সে উনকে সেবা করনে লাগে তো উনি বিরাট ভাগবত আমাদের লিখা আপনার নাম নেই উল্লেখ কিয়া লিখা কই সন্ত কই গুরু কই আচার্য এনি কাকে মেয়ে হুঁ তো ও সময় ও গোয়ালের লড়কে কো কুছ নেই আতা পড়া লিখা ভি নেই কেবল এক মন্ত্র দে দিয়া ইষ্ট গোপাল মন্ত্র দে দি বলে ইসকা তুম জপ করনা উনকো পতা নেই কেসে জপ করনা চাইয়ে পূরব মুখে ব্যাঠ করকে উত্তর মে ব্যাঠ করকে ইয়া না ধো করকে ইয়া হ্যাঁ झूठे मुंह नहीं पवित्र होकर के, वो कुछ नहीं जानता। तो वो जप करने लगा तो कुछ दिनों में उनके अंदर कितना सामर्थ्य आ गया। वो छोड़ छाड़ करके गोवर्धन को चला गया प्रयागराज। वहाँ जाकर के देखा कैसे ब्राह्मण देवता सेवा करते हैं अपने शालिग्राम की, और उनका लाड़ लड़ाते हैं, प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं, स्नान तिलक आदि करते हैं। और कुछ दिनों में वहाँ रहते रहते वहाँ का राजा बन गया और साधु संत सब की सेवा करने लग गए। अब मंत्र जपना कम हो गया। इतने में क्या देखा, वो जिस गुरु ने मंत्र दिया वो आकर के उनसे भेंट कर ली। हे मंत्र नहीं जप करता है, मंत्र जप करो, इसमें क्यों फंस गया। फिर मंत्र करने लग गया तो वो जगन्नाथपुरी पहुंच गया। जगन्नाथपुरी में जाके वहाँ का राजा का कोई पुत्र नहीं था, वहाँ ये राजा चला गया तो ये दूसरा राजा बन गया। अब तो अन्न छत्र खोल दी, जितने लाखों करोड़ों कोई भी आए प्रसाद पाओ रहो सब कुछ करो। किंतु इतना व्यस्त हो गया, राज्य के कार्य नहीं करता, खाली जगन्नाथ जी की सेवा करता। फिर भी कोई छोड़े नहीं उनको, पूछते थे, आदेश निर्देश के बिना करते नहीं कुछ भी। फिर गुरु पहुंच गया, जाकर बोलते हैं मंत्र नहीं करता, मंत्र कर, मंत्र को छोड़ना नहीं, मंत्र जप करो। फिर मंत्र करते करते सीधा पहुंच गया स्वर्गलोक। वहाँ का इंद्र कुकर्म के द्वारा पतित हो गया तो वो इंद्र बन गया। जब वो देवेंद्र बना स्वर्गलोक को, सब भक्त मना भक्ति का प्रचार कर दी, नाच गान ये सब ऐस मौज नहीं। और नंदन कानन में जाकर के भोग करना नहीं, सबको भक्त बना दी। फिर गुरु पहुंच गए, बोले क्या यहीं तक ये करने के लिए, इधर बनने के लिए आया, मंत्रकार मंत्र को भूल जाता है। तो कहते हैं यदि गुरु से मंत्र मिला, मंत्र क्या है, धर्मतु साक्षात भगवत प्रणीतम, और मंत्र क्या है, जो मंत्र सो गुरु, जो गुरु सो स्वयं भगवान। अब वो मंत्र कोई साधारण नहीं शब्द ब्रह्म है, ये मंत्र का यदि जप करे चाहे कहीं जाओ सर्वत्र सर्व सिद्धि। किंतु मंत्र का जप करना है, भूलना नहीं है। कुछ मिल गया तो फिर हमसे सिद्धि हो गई, ऐसा नहीं। ओ गुरु स्वर्ग में भी जाकर के उनको कहने लगे मंत्र क्या, मंत्र जप नहीं करता। फिर मंत्र करने लग गए तो सीधा ब्रह्मलोक शिवलोक करते करते वैकुंठ द्वारका मथुरा करते करते एकदम नित्य वृंदावन तक पहुँच गए। सब जगह गुरु पीछे पीछे, छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए जब चातुर्मास से शुरू होता है और समय 100 साल मंत्र का जप करे तो जो फल होगा वो यहाँ चातुर्मास समय या सत्संग में बैठ कर के धाम में एक दिन की भी यदि मंत्र का जप किया तो उनका जिम्मेदारी स्वयं वैष्णव गुरु उनका हो जाता है। मूल गुरु बलदेव प्रभु शक्ति दे दिया, कलयुग में नित्यानंद प्रभु आए, ओ महाप्रभु ने उनको भेज दिया जाओ सर्वत्र सब जगह जाओ प्रचार करो। केवल सन्यासी बनकर एक जगह रहने से नहीं हुआ, प्रचार करो। तब प्रचार करने लगे तो जहाँ जाते हरि कीर्तन शुरू कर दी। तीन तीन महीना दिन रात कीर्तन चल रहा है तो किसी को भूख नहीं प्यास नहीं, जो आते हैं वो भी भूल जाते हैं। देह धर्म से मनोधर्म से अतीत कर दी। तो इसी चातुर्मास्य का इतना प्रभाव है। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जब रामकेली में थे, बाकला चंद्रदीप से रामकेली आए, कुछ ऐसे बादशाह ने उनको हाँ सचिव और प्रधानमंत्री बना के रखा, किंतु वो लोग मारा मंत्र जब छोड़े नहीं। सारे ब्राह्मण निमंत्रण देते भक्तों को, कीर्तन कथा सत्र, फिर सब एक साथ में बैठ कर जप करना। क्यों अकेले अकेले मंत्र जप करना बड़ा कठिन है, क्योंकि देवता लोग बाधा देंगे, इससे वो करने नहीं देंगे, उत्तर मचाएंगे। जैसे सब संत मंडली बैठ गए, कीर्तन हो गया, हवन हो गया, कथा हो गया, अब जप करना बैठ गया, कितना पुरस्करण। अपने भगवान के जो मंत्र हैं, मंत्र को संख्या पूर्वक प्रतिदिन जप करना है, तब तो साक्षात्कार होगा। किंतु अकेले जब हम बैठते हैं, खाली मन शैतान का घर है। मन महाशय हमें कहाँ लेके चल जाएगा, मंत्र के पास नहीं, देवता के पास नहीं, वो कहीं और खेत खलिहान में लेके भाग जाएगा। क्योंकि 33 करोड़ देवता वो देखते कि ये हमारे सर पर पैर देकर ये आगे बढ़े जा रहे हैं, ये टांग पकड़ खींचो उसको, किसी को नहीं छोड़ता। ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि तब छोड़ते नहीं। इसलिए जब सत्संग में भक्तों के गोष्ठी में जब शुरू करते हैं, एक साथ में सब लोग जप कर रहे हैं, तो क्या होता है, कहते जब सनातन गोस्वामी पुरस्कार शुरू कर दी, तो राजा के पास बादशाह के पास खबर गया। बादशाह बोले राजभवन में राजकार्य में क्यों नहीं आते, बोले तबीयत खराब है। बोले तबीयत खराब है, राजा स्वयं वैद्य भेजा, वैद्य ने देखा ये तो ठीक है, तो राजा खुद चल के आए। बोले आप हमारे बड़े भाई, राजकार्य छोड़ दिया, मैं अत्याचार करता हूँ, देश दुनिया को लूटता हूँ, हम राज्य शासन हमारे बस की तो है नहीं, आप मेरा बड़े भाई है, राजकार्य सब संभालते हैं, आप यदि घर बैठ गए तो क्या होगा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं हमारे अब बस की नहीं है, आप किस कितने लोग इस पद को लेना चाहते हैं, आप किसी को दे दो, मेरे को छुटकारा दो। बोले यही नहीं हो सकता, छोड़ूंगा नहीं, या मेरे साथ में युद्ध में चलो देश जय करने के लिए, या तो राजकार्य देखो, मैं तो रहता नहीं। बोले हमसे नहीं होगा, बोले फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल में बंद कर दिया। ऐसी जेल नहीं, जहाँ रहते थे बस चारों तरफ सेनाएं तैनात कर दी, ये भाग नहीं जाए। अब सनातन गोस्वामी वहाँ रह रहे, रूप गोस्वामी पहले निकल के चले आए, रूप गोस्वामी ने पत्री भेजा, आते समय 10,000 स्वर्ण मुद्रा किसी बनिया के पास में धर दिया, हमारे बड़े भाई की जरूरत पड़ा तो उनको मदद करना दे देना। तो सनातन गोस्वामी को बंदी करके तो चला गया राजा। सनातन गोस्वामी जेलर को कहते हैं देख भाई, मैं तुमको नौकरी में रखा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं पीर फकीर होकर के मक्का मदीना चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। बोले मैं छोड़ूंगा तो मेरा वंश समेत राजा नाश कर देगा, मार देगा। बोले कह देना ये दरिया में गया था दिशा मैदान फिरने, नहाने धोने, उछल गया, पानी में बह गया। बोले नहीं कर सकता हूँ। बोले देखो तुम्हारा खुदा तुम्हारा दुआ करेगा, मुझे छोड़ दोगे तो मैं फिर फकीर बन के चला जाऊँ, नहीं। तब क्या किया, बनियाओं से जिसके पास पैसा था 5,000 स्वर्ण मुद्रा लाया, ये ले ले, राजी नहीं हुआ। फिर 10,000 लाया, सब दे दिया। तो बोले आधी रात को मेरे को लेके गंगा पार कर देना, मैं चला जाऊँगा और फिर कभी नहीं आऊँगा। और तुम बोल देना क्यों दरिया में बह गया। अब 10,000 स्वर्ण मुद्रा तो ले ली, जब गंगा पार कर दी, जंगल है, क्योंकि वहाँ से मालदा से आते समय सोनपुर पड़ता है, सोनपुर से आगे गंगा के उस धार सारे जंगल जंगल है, फरक्का से लेके पूरा। तो जब आने लगे, एक सेवक बोले मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं जाऊंगा, साथ साथ चले। जब जंगल में प्रवेश किया, जाड़े का दिन है, नंगे पैर कभी चले नहीं, कपड़े लत्ते हैं नहीं, एक तेमत पहने हुए हैं, एक हैं ओ चादरा मुसलमानों के होते हैं, हैं वो लोग कब्रगाह में चढ़ाते हैं, ऐसे उड़ करके रंगीन वो चल दिए। तो जंगल में आया तो आधी रात हो गया, हाँ, अब शेर भालू चीता गंडार दुनिया भरे पड़े हैं। उतने में देखा लाइट लेकर के, लंटन लेकर के कोई आया, आकर के बोलते हैं आप लोग ये गभीर गहरी रात जाड़े का दिन कहाँ जा रहे हैं, शेर भालू चीता खा जाएगा, आइए हमारे हाँ यहाँ पर आश्रम है, घर है, यहाँ विश्राम कीजिए, सुबह चले जाना। सनातन गोस्वामी गए, दोनों को ले गया, लाके गर्म पानी कर दिया, बड़े खातिरदारी करने लगे, खाट पलंग का बिछा दिया, गर्म गर्म खाना ले आया बना के, बोले दाल में कुछ काला है। अनजान व्यक्ति जंगलों में इतना खातिरदारी कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ इसके अंदर हाँ कुछ है। अब सेवक को पूछा, भाई एक बात बताओ, ये जंगल में ये लोग मेरे लिए हमारे लिए इतना खातिरदारी कर रहे हैं क्यों, तुम्हारे पास क्या है बोलो। तो बोले मेरे पास सोने का मोहर 8 है। बोले दे अभी जल्दी, दे दिया। वो लेके सरदार के पास गया, सनातन गोस्वामी, क्यों राजमंत्री कितना चतुर, उनको दे दिया। देखे बोले महाराज हमारे पास यही है, आप ले लो, हम लोग को जंगल पार कर दो, हम यहाँ रहने के लिए नहीं, जंगल पार कर दो, हम रातों रात हम चले जाते हैं। वो क्या कहते हैं सरदार, बहुत अच्छा, आप बहुत चतुर हैं, आपने दे दिया, नहीं तो रात को खा पी के सोते, हम मार देते, क्योंकि हमारे यही काम है जंगलों में, हम लोगों को ज्योतिष से जान जाते हैं कौन आ रहा है, कौन पार कर रहा है, कौन किसके पर कितना है, तो हम जानते हैं आपका 9 मोहर है, 8 दे दिया, 1 रह गया, कोई बात नहीं, 1 के लिए हम सोचते नहीं, 8 तो दे ही दिया। अच्छा तो अच्छा हमें जंगल पार कर दो। पर नहीं, खा पी के अब विश्राम करो, नहीं अब विश्राम नहीं। तो उन्हें अपना पहरेदार दे के जंगल पार कर दिया। इतने में सनातन गोस्वामी सेवक को पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम छिपाए मुझसे, तुम्हारा 9 मोहर है, तुमने बोला 8, एक और कहाँ है, बोले मेरे पास है। और अच्छा तो तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, तुम्हें पैसों में विश्वास, जाओ जाओ अब लौट के जाओ, मेरे साथ नहीं आ सकता। उनको विदा कर दी, चल यहाँ से। कितना रोया पीटा कि नहीं, निश्चित छोड़ दिया, क्यों जिनमें भगवान में भरोसा नहीं, वो हमारे साथ जाकर के आपद बनेगा, झंझट करेगा, कोई खाना चाहिए, सोना चाहिए, कौन देखभाल करे, मैं अपना जा रहा हूँ भगवान भजन करने, कोई पीछे पूछ रहेगा तो उसकी पूछ के लिए ही हमारा समय जीवन बर्बाद हो जाएगा, हिस्से बाट करना, भगा दिया। अकेले अकेले आ रहे, जब सोनपुर आया वहाँ देखा पशुओं की पेट है, वो आज भी है, कितना बड़ा पशु मेला लगता है। उनके खास जीजा जी राजा के दरबार में पशुओं को खरीदने के लिए राजा उनको भेजते थे, बड़े बड़े घोड़ा हाथी हैं ऊँट वो खरीद के ले जाते। तो देखा वो टूंगी में चढ़ा हुआ है, उन्हें देखा एक दरवेश आ रहा है, बड़े बड़े दाढ़ी हो गया, क्योंकि पहले जेल में और फिर बाहर आए तो तेमत पहने हुए हैं और एक ऐसे कपड़ा उड़े हुए हैं, जाड़े का दिन है, कुछ नहीं है। उतर करके आया, उनसे मिला, बोले मैं अब वृंदावन जा रहा हूँ, अब नहीं लौट के आऊँगा। उन्होंने एक कंबल खरीद दिया, बेस्ट कीमत, बोले पश्चिम में और ठंडा है, कंबल ले जाओ। जब कंबल ओढ़ के तो चला, वहाँ से जब वाराणसी आए तो महाप्रभु उस समय तपन मिश्र के घर में विराजमान है। चंद्रशेखर आचार्य और बड़े बड़े मराठी दक्षिण भारत के बहुत पंडित विद्वान शुरू से वाराणसी में रहते, तो वो लोग महाप्रभु जी के पास कीर्तन के समय, कथा के समय सम्मिलित होते। महाप्रभु जी ने कहा कोई एक बड़े संत आए हैं, दरवाजे में खड़े हैं, उनको बुला के लाओ। तपन मिश्र कहते हैं बाहर गया, देखा कोई संत तो नहीं, तो महाप्रभु बोले बुलाया नहीं, बोले यहाँ तो कोई है नहीं, एक दरवेश है मुसलमान फकीर है खड़ा है, बोले उसी को बुला लाओ। बुला लाया तो महाप्रभु जी को देखकर साष्टांग दंडवत की, महाप्रभु जी ने उनको बोला जाओ भद्रवेश बना के आओ। तो जाके गंगा जी में स्नान करके अपना तैमत पैमत चादरा फादरा फेंक दिया है, स्नान करके एक छोटा सा कपड़ा पहन करके आया गया, तो उसने तपन मिश्र को बोला आप इनको कुछ वस्त्र दे दो। तो उन्होंने अपना नया वस्त्र लाया, उन्होंने नहीं पहना, बोला आपके पहने हुए कोई पुराने वस्त्र दे दो, हम भले ही उसको ले लेंगे किंतु नया वस्त्र हम नहीं लेंगे। हम जब सड़क में पीर फकीर बन के आया गया तो अब हम भोग नहीं करेंगे। तो नहीं माना तो एक कपड़ा दे दी, उसको दो टुकड़ा करा, एक टुकड़ा चादरा बना ली तो एक टुकड़ा पहन लिए आधा आधा करके, और उसमें डोरकोपिन बनवा लिए। अब महाप्रभु का कम्बल अपने कंधे में है, महाप्रभु का आया मुड़ मुड़ाया सब साफ सुथरा होकर आए हैं, तपन मिश्र ने कंठी माला दे दी, अब बैठे प्रसाद भी पाया। तो महाप्रभु के बार बार कंबल देखते हैं, बेश कीमती कंबल, साधु बन गया, बाबा जी बन गया, फकीर हो गया, तो अब इतना बड़ा कीमती कंबल लेकर के ओढ़ घूम रहा है, तो क्या है? तो माँ वो समझ गए, फिर गया गंगा किनारे, जो झुगड़ी झोपड़पट्टी में रहने वाला गुदड़ी को बिछाते हैं उड़ते हैं और सुखा रहे थे, तो बोले हमारे ये कंबल ले लो, हमें ये गुदड़ी दे दो। बोले अच्छा तुम्हें मजाक करने कोई और नहीं मिला? तो उन्होंने ज़बरदस्ती कंबल को देके एक गुदड़ी लेके चला आया। महाप्रभु बहुत खुश हो गया, वाह साधुओं की व्यवहार ऐसी वृत्ति होना चाहिए, साधु यदि हीरा जरात कान छिद करके पहन ले, नाकों में पहन ले, हाथों में कड़े पहन ले, और सुंदर बेशकीमती मलमल के सिल्कन के कपड़ा पहने, तो साधु क्यों बना? भोग करने के लिए है तो तुम हैं साधु मार्ग पर क्यों आया? महाप्रभु उनके भोट कमल देख के बहुत खुश हो गए, वो गुदड़ी देख के बोला ये साधु के लिए ठीक है। जब महाप्रभु ने अपने पास 2 महीना वाराणसी में रखा और 2 महीना लगातार उनको संबंध ज्ञान, भगवान से कैसे संबंध हो सकता है, भगवान से मिलने के लिए उपाय क्या है, तब उन्होंने पूछा था कि आमी क्या नमोरे जारे तापत्र है नहीं जानी यह कैसे हित है। उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, क्यों मुझे ये आध्यात्मिक आदिदेवी आदिभौतिक ताप सताते हैं, मेरा शुद्ध परिचय क्या है, अर्थात मेरा भगवान से संबंध कैसे हो सकता है? जड़ जगत में तो चमड़ी दमड़ी में तो हम रमे हुए हैं, कैसे इससे पार हो सकते हैं? तब महाप्रभु जी ने संबंध ज्ञान के ऊपर में 2 महीना तक संबंध अविद्या प्रयोजन तत्व के ऊपर शिक्षा दी, और बोले जाओ ब्रज में वहाँ रहो भजन करो और वैष्णव स्मृति ग्रंथ प्रकाश करो, नियम कानून सब। तो बोले आपने 2 महीना सुना है मैं तो भूल जाऊंगा सब, याद तो रहेगा नहीं, बोले तुम दुनिया को याद करोगे तो भूल जाओगे, मुझे याद करोगे तो सब कुछ याद, सब कुछ तुम्हारे पास वर्तमान रहेगा। ये संबंध हम कहाँ हैं, कितने देर तक साधु संत भगवान हमारा यादगार में आता है, स्मरण में आता है, और कितना देर अनवरत हमारा 24 घंटा रैली चलता है, कुटुंबी संबंधी परिवार, एक जन्म नहीं कितने जन्मों का। रात को सो जाओ बटन ऑन हो जाता है ना, देखो सारा दुनिया आता है, शेर भालू चीता गंडार और उल्लू बिल्ली और कितने कितने नाग नागिन अप्सरा गंधर्व किन्नर कितने जन्म गए सब आते हैं, और जगह तो रिश्तेदार नातेदार। तो हम कितने देर प्रभु का स्मरण करें। सनातन गोस्वामी को बोले यदि सब कुछ याद करना है रखना है तो मुझे स्मरण क्या करो। इसे गुरु मंत्र लेने से नहीं होता, गुरु को याद करना पड़ेगा, गुरु के पास रहना पड़ेगा। तन से नहीं हो तो मन से तो रहो, आत्मा तो पीछे की बात है। तो साक्षात्कार तभी तो होगा। तब सनातन गोस्वामी वृंदावन आए, आके क्या देखा, वृंदावन ऐसे भूमि है अपराकृत, जमुना जी गोवर्धन और ब्रज के द्वादश वन उपवन यहाँ आते ही बस माया तो गया और स्मृति तो भूल गए, भगवत स्मृति अपने आप होने लग गया। और बैठ गए तो बापू जी ने क्या कहा, जो कुछ लिखोगे प्रमाण दोगे शास्त्र का, तो शास्त्र कहाँ से लाएंगे, वेद वेदांत उपनिषद पुराण कहाँ से लाएंगे भाई, इतना ग्रंथ आजकल तो उपलब्ध भी नहीं है। तब कहा सनातन गोस्वामी को, देखो वैष्णव जी को याद कर लो जिस चीज की जरूरत पड़े। अभी ये श्लोक कुछ लिखा, इसका श्लोक और प्रमाण कहाँ से आएगा, वैष्णव जी को स्मरण करो। स्मरण किया तो देखा स्कंद पुराण इतने नंबर में इतना श्लोक है, बस लिख दिया स्कंद पुराण का है, जो जो लिखना है स्मृति के बाद जो नियम सब कुछ वैष्णव जी ने सब सामने कर दी। नहीं तो उनके पास तो घर भी नहीं था रहने का, कभी किसी के देवालय में बारंदा में, कभी पेड़ के नीचे, कभी कहीं हैं, तो जाड़े में गर्मी में सर्दी में कोई कपड़े लगते नहीं, कोई भोजन का व्यवस्था नहीं हैं, किंतु सारे ब्रजवासी उनको बड़े बाबा सिद्ध बाबा के रूप में उनको आदर सम्मान देते हैं। कहीं ब्राह्मण के घर में स्थूल माधुकुरी, नहीं तो देवालय में स्थूल भिक्षा हैं, अपना जीवन बिताने ब्रज में रहने लग गए। किंतु कभी इच्छा हुई कि महापुरुष से मिलने के लिए एक बार तो जाऊं, फिर जगन्नाथपुरी पहुँचे, 10 महीना वहाँ महाप्रभु के पास रहे, फिर वहाँ से महाप्रभु ने भेज दिया ब्रज में जाओ। तो ब्रज में आया तो क्या देखा, वृंदावन से मथुरा जाते, मथुरा से गोवर्धन, तो मथुरा में जब सुबह पहुँचते देखे चौबे के घर में एक ठाकुर जी हैं मदन गोपाल, उनकी सेवा करते हैं, तो सुबह सुबह दातुन करते हैं चौबेन, और एक बटलोई में खिचड़ी चढ़ा दिया, एक तरफ दातुन करते हैं दूसरी तरफ से चलाती है, खिचड़ी पक गया तो थाली में दे दिया, अपने बेटे को खा लेना मैं जमुना जा रही हूँ। तो बोला था, उसका नाम था सदन, सदन बोला था मदन आजा आजा भाई आ, खिचड़ी माँ ने बनवा दी, अकेले क्यों खाओ, तू भी खा, हमारे घर में रहता है तो तेरे को भी तो पहले खिलाना है, तब मैं खाऊंगा ना, दोनों जने खाऊंगा ना आ। दोनों आता बस गर्म खिचड़ी, ओ अब ठंडा तो है नहीं, हाथ जल रहा है, फिर भी फूंक मार करके जैसे तैसे करके वो भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, दोनों खा रहा है। सनातन गोस्वामी देख रहे, देखो बच्चे तो मंत्र नहीं तंत्र नहीं दीक्षा नहीं कुछ नहीं, और ठाकुर जी को बुलाया आजा मदन आजा बैठ जा। हाँ? तो जहाँ प्रेम है ना
इसलिए एक मंत्र उपासना और सारसी की उपासना। उसको विश्वास है सुबह सुबह मेरे को भूख लग दिए तो ठाकुर जी को भी भूख लग दिए, उनको भी मुझे खिलाना है, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। अब सनातन वर्ष में देख रहे क्या करेंगे, मंत्र जप के क्या करेंगे, तंत्र करके क्या करेंगे, साधन करके और व्रत और होम करके त्याग तपस्या करके। यदि प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। अब रोज देखते, एक दिन वो चौबेन को कहा, अरे माता आप सुबह सुबह रोज दिन दांतुन करती है और दांतुन के उल्टे तरफ से खिचड़ी चलाती है, कम से कम नहा धोकर के बर्तन मांज के पवित्र होकर के बनाया करो। अब बच्चे तो क्या है, परमात्मा का तो उनके हृदय में भी है, ये नहीं कहा कि मदन खाते हैं। दूसरे दिन ये जमुना जी गई नहा धोकर के आई बर्तन मांज के, तब तो बच्चे दोनों रोने लग गए और सनातन गोस्वामी में आए तो पकड़ लिया, बाबा तूने हमारी माँ को क्या कर दिया, देख तू तो बूढ़े आदमी है भूख नहीं लगता, मेरा देख हम बचपना है भूख लगी है, हम तड़प रहे हैं, दोनों लुटपुट खा रहे हैं मिट्टी में जमीन में है। इससे कहते हैं एक होता है भाव सेवा और एक होता है अपना तपस्या। वो तप में ये संबंध नहीं है, सनातन गोस्वामी देख रहे हैं कहाँ संबंध है। अब चौबेन को बोला, माता नहाने धोने की जरूरत तो नहीं है, तुम जैसे खिचड़ी बनाती ऐसे ही बनाओ, बच्चे रोते हैं छटपटाते हैं हैं हमसे नहीं देखा जाता है। फिर दूसरे दिन वो ऐसे बना के छोड़ के चली जाती, उन्हें पता नहीं कि मेरे बेटा भी खाता है तो मदन भी आके खाता है। फिर दोनों खेलने लग जाता है और गिल्ली डंडा खेलते हैं, किंतु कैसे शर्त करा, मैं हार जाऊँ तो तेरे को कंधे में लेके घुमाऊँगा, तू हार जाएगा तो मैं कंधे में लूँ, तू मुझे कंधे में लेगा। तो पहले तो सदन हार गया, मदन को लेके घूम के आया, और जब मदन हार गया और सदन को कंधे में चढ़ाने के लिए गया तो पीछे भाग गया, भाग गया तो बोला अच्छा कहाँ जाएगा तू, मंदिर में जाके मूर्ति बन गया। पुजारी बोले किधर जा रहा है, वो तो उनको तो दिखाई नहीं देता ना, वो डांट करके बच्चे को भगा दिया, वो कल आएगा ना खाने और खेलने तब मजा दिखाऊंगा, आज तो तू मंदिर में घुस गया ना और मूर्ति बन गया ना, कल तो तेरे को भूख लगी तब तो आएगा ना। देखो सनातन गोस्वामी देख रहे हैं, न पुजारी देख रहा है न चौबेन देख रहा है, इसलिए वो प्रत्यक्षीभूत तब होगा। शुरुआत में आप मंत्र का जप करो, ध्यान करो गुरु का, तब वो साक्षात्कार कराएंगे। सबके सामने है किसी की आँख ही नहीं देखने की, जहाँ जाए उनको दुनिया पत्थर ही दिखे, पत्थर लकड़ी के अलावा कुछ दिखे नहीं, तब सनातन गोस्वामी गिरिराज जी गए तो गिरिराज जी में भी साक्षात्कार हो गया। फिर एक दिन वो मदन बोले बाबा अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो मेरा घर नहीं द्वार नहीं कहाँ जाएगा, बोले जहाँ रहेगा वहीं रहूँगा। बोले क्या खाएगा, मैं तो माधुकरी करता हूँ टुकड़ा खाता हूँ। बोले मैं जो खिलाओगे खाओगे वही खाऊँगा खिलाओगे, तो चलो। बोले कैसे चलूँगा, कोई रथ फत ले आ पालकी ले आ। बोले मैं बाबा जी आदमी मेरे पास कुछ तो है नहीं, तो बोले तो मूर्ति कहीं चलता है। बोले मूर्ति कहीं बोलता है तो चलता है, पीछे पीछे चल। जब वृंदावन लाके कालीदह के पास में द्वादश आदित्य टीला सूर्य टीला उसके ऊपर रख करके ऊपर एक पत्थर दे दी, दोनों तरफ तीन पत्थर देके उनको रख दिया, बोले यहीं रहो। फिर माधुगुरी करके आटा ले आते, उसी को जमुना जल से बाटी बना के आँच में पत्ता वत्ता देके सेक के देते, खा ले। बोले थोड़ा नमक तो दिया कर। बोले आज नमक मांगोगे कल सब्जी मांगोगे फिर घी मांगोगे, मिठाई मेरे बस की नहीं है। बोले मैं व्यवस्था कर लूँ। बोले कर लो। जब कर लिया बड़ा मठ मंदिर कितना सुंदर कथा बना लिया, तो बोले अब तू मेरे पास रहे। बोले नहीं। बोले क्यों, बोले तुम खा सकते हो हजम कर सकते हो, मेरे को लालची बना दोगे, बड़े बड़े खा के ना ऐसे बन जाऊँगा भोगी बाबा जी, भजन रजन नहीं होगा, तुमको भी भूल जाऊंगा, छोड़ दूंगा, खाने में ही मन लग जाएगा, नहीं खाना है मुझे और न रहना है तुम्हारे पास, तो कहाँ जाएगा? और ब्रज में सर्वत्र भ्रमण करूँगा, तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, राधे राधे बोलूँगा और ब्रज में भ्रमण करूँगा, राधा रानी के चरणों में रहूँगा, तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। देखो मदन कहते अच्छा मैं अकेला हूँ इससे नहीं रहेगा है, तो सनातन गोस्वामी चले गए। ओ कहाँ नंदगांव पवन सरोवर, कभी कामा जलखोर, कभी गोवर्धन में चकलेश्वर में हैं, सर्वत्र ब्रज में भ्रमण करते हैं, क्यों? राधा रानी के दास्य चाहिए, किंकरित्व चाहिए, तो कभी प्रभु को भूलेगा नहीं, अलग होएगा नहीं। ते सनातन गोस्वामी पूरा ब्रज में जितने हमारे वैष्णव स्मृति ग्रंथ प्रकाशन किया, प्रचार करा, सबको संबंध ज्ञान दिया और साक्षात्कार कराया, उनका काल तिरुभाव तिथि और भजन साधन कैसे करना है उन्होंने दिखाया। शुरू में उन लोगों ने मंत्र का पुरस्करण किया, इसके बाद में महाप्रभु के मिलने के बाद से वो लोग मंत्र भावना भाव सेवा और साक्षात सेवा अधिकार प्राप्त कर ली। तो आज और प्रबोधानंद सरस्वती बाद का भी तिरुभाव तिथि है, अब हम कल सुनेंगे, आज यहाँ तक रखते हैं। गौर प्रमानंदे हरि हरि। चलो आज बहुत रात हो गया, आरती करना है।
जय जय राधे कृष्ण गोविंद जय जय